السلام علیکم، یہ پارٹ 9 ہے ناول کال بیل حصہ دوم. یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. آواز کمل خلیل، پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری، مصنف سیما غزل. مزید کتب کی ریکارڈنگ کے لیے رابطہ کریں 03002919600 اور 03212138225. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 9. زہرا آپا محبت پانچ نگاہوں سے مجھے تکے جا رہی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں نمی اب بھی تھی. مجھے میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی، مگر اٹھنا ضروری تھا. میں دادا کا آخری دیدار کرنا چاہتا تھا. زہرا آپا نے مجھے سہارا دیا. میرے سر میں دھماکے سے ہونے لگے، آنکھوں کے آگے زرد رنگ ناچنے لگا، مگر میں اٹھ کھڑا ہوا. کیا شالی بابا ہیں؟ میں نے دھیرے سے پوچھا. لگ رہا تھا جیسے زور سے بولا تو سر ایک زوردار دھماکے سے پھٹ جائے گا. نہیں، کہیں گئے ہیں اور کہہ گئے ہیں کہ ان کا انتظار کیا جائے. میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا باہر نکل آیا. بڑے برآمدے میں سناٹا چھا گیا. سب سر اٹھا کر یا پلٹ کر مجھے دیکھنے لگے. آنگن کے بیچوں بیچ دادا کی میت رکھی تھی. برآمدے میں لوگ دریوں پر بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے. طاہر بھائی اور ناصر بھائی کے علاوہ خاندان کے دوسرے لوگ بھی مختلف انتظامات میں لگے تھے. گہری خاموشی اور افسردگی میں لپٹی یہ مصروفیات، یہ بھاگ دوڑ دل میں کانٹے سے چبا رہی تھی. اماں باورچی خانے کے قریب کھڑی تھی. بڑے حکیم صاحب کے منجھلے بیٹے کے گھر سے آئے ہوئے لوگ مجھے ماں کے قریب کھڑے نظر آئے. مجھے دیکھتے ہی اماں تیز قدموں سے میرے قریب آ گئی. وہ لوگ جو اب تک کافی رو چکے تھے، جن کی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھوں میں اب ایک بے نام سی خاموش اداسی ٹھہر چکی تھی، وہ سب مجھے دیکھ کر چونک اٹھے تھے. منے دادا جو ایک طرف نڈھال سے بیٹھے تھے، مجھے دیکھتے ہی خود کو سنبھالتے ہوئے میرے قریب آ گئے. زہرا آپا نے مجھے منے دادا کے قریب چھوڑ دیا. انہوں نے مجھے تھام لیا. میرے قدم دادا کی میت کی طرف اٹھ رہے تھے اور طوفان دل میں. باوجود کوشش کے میں منے دادا سے ایک لفظ بھی تعزیت کا نہ کہہ سکا. میرے حلق میں جیسے گولا سا اٹکا ہوا تھا اور یہ گولا نمکین تھا. ضیا، آج تو میں بھی یتیم ہو گیا. منے دادا کی بھرائی ہوئی آواز نے مجھے لرزا دیا. ایسی بے بسی اور ایسی بے چارگی میں نے لوگوں کے چہروں پر دیکھی تھی تو مگر سنی نہیں تھی. اس لرستی کانپتی آواز نے میرے سماعت میں خراشیں ڈال دی. میرے حلق میں پھنسا گولا ایک سسکی کے ساتھ ہی کہیں تحلیل ہو گیا. اب اختیار میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا. میں بابا کی موت پر بھی اتنا نہیں رویا تھا، شاید اس لیے کہ ان کے اور میرے درمیان جو رشتہ تھا، اس کی ساری حدت ان کے سرد رویے نے نگل لی تھی. بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے انجانا سا اطمینان ہوا تھا کہ اب اماں سکون سے میرے پاس سو سکیں گی. پیار نہ انہوں نے دیا تھا نہ انہیں ملا، مگر دادا، انہوں نے مجھے جو پیار، جذبوں کی جو حدت اور رشتوں کا جو تقدس دیا تھا، وہ آج آنسوں کی شکل میں اپنی موجودگی کا احساس اور میرے اکیلے رہ جانے کا خوف دلا رہا تھا. دور بیٹھے یا کھڑے لوگ سمٹ کر میرے قریب آ گئے تھے. میری نگاہیں دادا کے وجود پر جمی تھی. مجھے یہاں سے ان کا چہرہ تو دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر سفید کفن میں لپتا لاغر سا وجود وہیں سے میرے دل کو لرزائے دے رہا تھا. یہ نہیں ہے کہ مجھ میں ضبط کا یارانہ تھا یا میں عورتوں کی سی غمزدہ کیفیت کا شکار تھا. نہیں، میرے تمام آنسو میرے اندر میرے دل پر گر رہے تھے. میری آنکھیں خشک تھیں، زلزلے اندر آ رہے تھے، چہرے پر سنگلاخی کا احساس مجھے پوری شدت سے تھا، اس لیے کہ میں اس کی کوشش میں بھی تھا۔ میں اندر سے دو حصوں میں منتقسم تھا، ایک وہ جو دادا کی جدائی پر پچھاڑے کھانے کو مچر رہا تھا، میرے اندر طوفان اٹھا رہا تھا، اور دوسرا وہ جو مجھے مضبوط جوان اور صابر مرد ہونے کا احساس کچوکے دے کر لگا رہا تھا۔ دادا کے چہرے پر بلا کا سکون تھا، ان کے چہرے پر پھیلے اس سکون کی لہروں نے جسے آنکھوں میں اتر کر میرے اندر کے تمام طوفان کو منجمد کر دیا۔ ایک دم اندر سناٹا چھا گیا، مگر باہر لوگوں کی سسکیاں گونجنے لگیں۔ سب جانتے تھے کہ میں تب سے اب تک بے ہوش تھا۔ اب دادا کی صورت دیکھ کر وہ میرے رد عمل سے نا واقف تھے، مگر شاید میرے غم کو راہ دکھا رہے تھے۔ میں ان کے قریب بیٹھ گیا۔ منی دادا کا وہ ہاتھ کانپ رہا تھا جس نے میرا بازو تھام رکھا تھا۔ میں نے ہلکے سے انہیں تھپکی دی۔ طیب جانے کہاں تھا، لپک کر میرے قریب آ گیا۔ میں نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا، وہ بچوں کی طرح منہ بسور رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خوف اور دکھ دونوں ہلکورے لے رہے تھے۔ میں نے نگاہ پر دادا کے چہرے پر جما دی۔ میں نے دیکھتا رہنا چاہتا تھا، ان کے چہرے پر پھیلے سکون نے مجھے ہلکا پھلکا کر دیا تھا۔ اب میرے اندر غم نہیں سناٹا تھا، طوفان نہیں سکون تھا، عجیب سا خوفناک سکون، وہ خاموشی جو قبرستانوں میں جا کر محسوس ہوتی ہے، مجھے یہاں محسوس ہو رہی تھی۔ حالانکہ لوگوں نے مجھے خاموش دیکھ کر پھر اپنی جگہ سنبھال لی تھی، کسی ہنگامے یا غم کے طوفان اٹھنے کے منتظر لوگ میرے رد عمل سے مایوس ہو کر دوبارہ سپارے پڑھنے میں محو ہو چکے تھے۔ وہ بھاگ دوڑ جو اب سے پہلے تھم چکی تھی پھر شروع ہو گئی۔ اماں، جن کی آنکھیں آنسو سے اچانک بھر گئی تھیں، وہ انہیں دوپٹے سے رگڑ کر صاف کر چکی تھیں۔ پھر کسی نے آواز لگائی، کلمہ طیبہ پڑھو، ڈولا اٹھاؤ۔ ایک شور اٹھا رونے اور کلمہ پڑھنے کا، عورتوں کی سسکیوں کا، قدموں کی چاپ ابھری اور گھر میں کوہرام مچ گیا۔ شالی بابا آ گئے۔ بس یہ آخری جملہ مجھے یاد رہ گیا۔ میرے سر کی چوٹ کافی گہری تھی جس نے مجھے ہلکان کر دیا تھا۔ میں جنازے کے ساتھ جانے کے قابل نہیں تھا، ذرا سی حرکت مجھے دکھن میں مبتلا کر دیتی تھی۔ منی دادا، اماں اور خود شالی بابا نے مجھے روک دیا۔ شالی بابا مجھ سے کہہ گئے کہ میں اپنے کمرے میں رہوں، باہر نہ نکلوں، وہ واپس آ رہے ہیں۔ طیب نے مجھے کمرے تک پہنچا دیا، میں دادی سے بھی نہ مل سکا۔ شالی بابا کے اس جملے میں کہ میں کمرے سے باہر نہ نکلوں، ہدایت نہیں تنبیہ تھی، کم از کم میں نے یہی محسوس کیا تھا۔ عصمت آپا میرے پاس آ گئی۔ مجھے پتا تھا کہ اس بار زہرا آپا کیوں نہیں آئی، انہیں یقیناً غشی کے دورے پڑ رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ پیروں کی جان نکل چکی ہوگی، ممکن تھا کہ ان میں ہلنے جلنے کی بھی سکھ نہ ہو۔ عصمت آپا وہیں سپار چہرہ لیے میرے سرحانے آ بیٹھی۔ مجھے پہلی مرتبہ بے حسی کی افادیت کا احساس ہوا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا بہت سا وقت کیسے گزر گیا۔ میری آنکھ گھر میں بہت سے قدموں کی چاپ اور سرگوشیوں سے ٹھل گئی تھی۔ لوگ قبرستان سے واپس آ گئے تھے، دروازہ بھیڑا ہوا تھا، باہر روشنی نظر آ رہی تھی مگر کمرے میں روشنی نہیں تھی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، اچانک مجھے اپنے کندھے پر کسی کے نرم ہاتھ کا لمس محسوس ہوا، کسی نے دھیما سا دباؤ ڈالا تھا۔ میں نے چونک کر دیکھا، وہاں ایک ہیولا سا نظر آیا، یہ کسی عورت کا ہیولا تھا۔ میں سمجھا عصمت آپا ہیں۔ عصمت آپا، شالی بابا آ گئے؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ نہیں، وہ نہیں آئیں گے، ایک اجنبی آواز سنائی دی۔ तुम इनका इंतजार मत करो जिया। कक कक कौन हो तुम? मैं बावजूद तकलीफ के उठने की भरपूर कोशिश करने लगा, मगर इसके हाथ का हल्का सा दबाव किसी पहाड़ का सा बोझ महसूस हुआ। ज्यूसा, इसका लहजा नमनाक था, मेरी समाज में जैसे बम सा फटा हो। वो जिसने मुझे परेशान कर दिया था, वो जो इन तमाम हादसों, सानेहों और अमवात की जिम्मेदार थी, वो जिसे देखने को मैं बेचैन था, वो मेरे बिल्कुल करीब बैठी थी। ज्यूसा, मेरे होंठों से सरसराती हुई आवाज निकली, हाँ, और मैं सिर्फ ये बताने के लिए आई हूँ कि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहती, ना तकलीफ देना चाहती हूँ। तुम भी ऐसी कोई कोशिश ना करो कि किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ। मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ जिया, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? तुम बकवास कर रही हो, गुस्से ने मेरे मुर्दा होते जिस्म में जैसे बेपनाह हरारत भर दी थी। तुमने ही मुझे इस हाल में पहुंचाया है, तुम ही इन तमाम अमवात का सबब हो। तो हम सबको हरासा कर रही हो और कहती हो कि तुम मेरी मदद करना चाहती हो, मुझे तकलीफ में नहीं देखना चाहती। मैंने तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दी है जिया, वो तो एलन है, एलन जो काबिल नफरत है, इसने एक खेल खेला और जीत गई। मैं इससे तुम्हें बचाना चाहती हूँ। वो अफ्रीका के तारिक जंगलों और वहाँ रहने वाले बदसूरत मर्दों से जादू सीखकर हर साल दिसंबर की आखिरी शब एक नया खेल शुरू करती है और फिर इस खेल को बरसों जारी रखती है। इसका ये जाल अब तक जाने कहाँ कहाँ फैल चुका है, पता नहीं कितने लोग इसका शिकार बने हैं और जाने कौन कौन इसका शिकार होने वाला है। इस खेल का हम अहम करदार यहाँ इंडिया में वतसला कमटेकर है। इसे तलाश करो जिया, इसे तलाश करो। वो सिया हैले की तरह नीम तारीकी में मेरे सामने बैठी थी, मगर इसका हसीन चेहरा मेरे सामने रोशन था। इसकी आबदार आंखों में बेपना अपनायत, मोहब्बत और अपनी जानिब खींच लेने की कशिश थी। तुम, मैं चीखने वाला था, चीखना चाहता था। मैंने हाथ बढ़ाकर इसे धक्का देना अपने सामने से हटाना चाहा कि अचानक किसी ने मुझे झंझोर दिया। जिया, जिया होश में आओ, जिया, ये क्या बदतमीजी है, क्या कर रहे हो तुम? ये आवाज तैयब की थी, झंझलाई और गुस्से भरी आवाज। यूं लगा जैसे मैं सोते से उठ बैठा हूँ। ट्रेन के हिचकोले, लोगों के बोलने की आवाजें, ट्रेन के इंजन की छुक छुक, सब गड़मड़ हो गए। मैं ट्रेन में था, सामने वाली सीट पर बैठी फैमिली सामान बांध रही थी, बच्चा मेरी खिड़की से बाहर झांककर शोर मचा रहा था। मैं सीट में बैठा हिचकोले खा रहा था और तैयब, जो अब से पहले मुझे झंझोड़ रहा था, चीख रहा था, अब सर झुकाए मेरी आंखों में झांक रहा था। इसके चेहरे पर तश्वीश थी, ना घर था, ना मेरा कमरा, ना आंगन में दादा की मैयत थी, ना मेरे सामने ज्यूसा। जिया, तैयब मेरे करीब बैठ गया। क्या बात है जिया? तैयब, मैं बोल उठा, मगर मेरी आवाज खुद मुझे ही अजनबी लगी। हाँ बोलो, क्या बात है? तैयब, दादा का इंतकाल हुआ था, हम घर में थे, शाली बाबा, ज्यूसा, सब थे। जिया, दादा के इंतकाल को काफी अरसा गुजर चुका है, इनका इंतकाल तो तुम्हारे बंबई आने से पहले हुआ था और अभी तो दिल्ली आया ही नहीं है, हम घर कैसे पहुँचेंगे? वो देखो, लोग दिल्ली के स्टेशन पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। ये बच्चा देखो, वही जिसने वो पत्थर लाकर दिया था। जिया, होश में आओ, शायद तुमने भी मेरी ही तरह कोई ख्वाब देखा है। ख्वाब? क्या मैं सो गया था? नहीं, सोए तो नहीं थे, वो उलझन अमेज लहजे में बोला। अभी अभी तो तुम ठीक थे जब दिल्ली का स्टेशन करीब था, और देखो हम अब स्टेशन की हुदूद में दाखिल हो रहे हैं। मैंने खिड़की से बाहर देखा, ट्रेन प्लेटफार्म की तरफ बढ़ रही थी। कुली और लोगों को रिसीव करने वाले हमारी खिड़कियों के साथ साथ भाग रहे थे। आपी आपी, अचानक मेरी खिड़की में खड़ा बच्चा चीखा। ये वही बच्चा था जिसने किसी औरत से शादी बाबा वाले पत्थर जैसा एक सिया पत्थर ला कर मुझे दिया था। वो स्टेशन पर किसी को देखकर चीख रहा था। मुझे याद आया कि अभी अभी मैंने जो ख्वाब देखा था बकौल तैयब के, मैं तो अब भी इसे ख्वाब मानने को तैयार नहीं हूँ। इसमें शाली बाबा किसी भी पत्थर को किसी के हाथ मुझ तक भेजने से इनकार कर चुके हैं। बेख्तियार मेरा हाथ कोट की अंदरूनी जेब में रेंग गया। वो पत्थर मौजूद था, मैंने इसे निकाल लिया, हथेली पर रखकर गौर से देखा। वो बेजान पत्थर था। इसमें मुझे वो जिंदगी नजर न आई जो मैं पहले और दूसरे पत्थर में देख चुका था। जिया, हुआ क्या था? तैयब बहुत परेशान था। मैंने खाली खाली आंखों से इसकी जानिब देखा। इस दौरान मैं अचानक बेपनाह शोर शराबा हो गया। ट्रेन अब झटके से रुक चुकी थी। कुली डब्बे में घुस आए थे, कुछ और लोग भी थे जो सामने वाली फैमिली को लेने आए थे और अब इनका सामान कुली से नीचे उतरवा रहे थे। स्टेशन पर हर शख्स जैसे दूसरे को पुकार रहा था। चलो रास्ते में सुनाना, तैयब ने अपना और मेरा बैग उठा लिया। मैं बेहद थकावट महसूस कर रहा था। उठा तो लगा जैसे मेरा सर चकरा गया हो। बेख्तियार मेरा हाथ सर के पिछले हिस्से की तरफ गया, वहाँ दुखन थी। वहाँ हाथ लगते ही तकलीफ की एक लहर सी दिमाग से लेकर एड़ी तक दौड़ गई। मेरे मुंह से सिसकारी निकली और मैं बेहवास भागता हो गया। तैयब, यहाँ यहाँ देखो क्या है। मैंने सर का पिछला हिस्सा इसकी तरफ कर दिया। मेरा ख्याल है ख्वाब बेदाग कैफियत में तुम्हारा सर सीट से टकराया है, गोमर सा बना है और शायद खाल भी फटी है। वो सर को टटोल टटोल कर कह रहा था और तकलीफ और हैरत से मेरी हालत खराब थी। वो ख्वाब नहीं था तैयब, मैंने सरसराते हुए अंदाज में कहा। गोया दादा तीसरी बार मरे थे, मैंने मजायका खेत अंदाज में आंखें फैला कर पूछा। एक मरतबा सचमुच, दूसरी मरतबा मेरे ख्वाब में वो इस भेड़िया नुमा इंसान के हाथों कत्ल हुए थे और तीसरी मरतबा। चलो यार, वरना ये ट्रेन हमें वापस बम्बई ले जाएगी। अब डब्बा खाली हो चुका था मगर बाहर अब भी भगदड़ मची हुई थी। इसे सब कुछ बताए बगैर कोई बात करना फजूल ही था। मैं इसका सहारा लेकर ट्रेन से नीचे उतर आया। सुबह के 10 बज चुके थे। हम स्टेशन से उतर कर सीधे तांगा स्टैंड की तरफ चल पड़े। यहाँ से घर का रास्ता काफी था। यही सोच कर के रास्ते में तैयब को तफसील से बताऊंगा। हम स्टेशन से बाहर आ गए। इस जमाने में बम्बई में कुछ टैक्सियां थी मगर दिल्ली में साइकिल रक्षा या तांगे चला करते थे और साइकिल रक्षा को आदमी खींचा करते थे। मैंने कभी साइकिल रिक्शा में बैठना पसंद नहीं किया और यहाँ से घर तक के लिए तो कोई भी तैयार ना होता कि घर बहुत दूर है। हमने जल्दी तांगा ले लिया। अब बताओ क्या हुआ था तुम्हें? क्या तुम बैठे बैठे और खुली आँखों में भी सोने के आदि हो? मुझसे ज्यादा बेचैन तैयब था। अब इसमें कुछ बर्दबारी और संजीदगी आ चुकी थी। वो मेरी कैफियत देखकर जान चुका था कि मामला काफी गंभीर है। मैंने धीरे धीरे इसे सब कुछ बता दिया कि हम दिल्ली उतर कर घर पहुँचे थे। वहाँ दादा जिंदा थे, बाद में मरे और फिर जीसा से मुलाकात। जीसा की बातें वतसला कमतेकर के बारे में शकूक, एलन के बारे में तफसील, ये सब इसने बहुत संजीदगी से सुना। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि इतना लंबा अरसा मैंने लम्हों के एक ख्वाब में बता दिया। बेटा जी, तुम जिन चक्रों में पड़ चुके हो इनमें सब कुछ मुमकिन है। तैयब ने इसी संजीदगी से जवाब दिया। फिर चंद लम्हे कुछ सोचता रहा। अचानक वो चौंक कर मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। जिया, इन तमाम वाकयात का क्या जवाब है? ये सब ख्वाब है या हकीकत, ये तो मैं नहीं जानता, मगर एक बात का मुझे अब यकीन होता जा रहा है कि दादा की मौत नॉर्मल नहीं थी। मैंने भी इन्हें ख्वाब में कत्ल होते देखा। तुमने इन्हें दूसरी बार मरते देखा, हालांकि वो मर चुके हैं। कह सकते हो कि ख्वाब सिर्फ मैंने देखा था कि दादा मरे पड़े थे और वो भेड़िए नुमा इंसान पास बैठा था। मुमकिन है इस भेड़िए नुमा इंसान के ख्वाब ने मुझे ख्वाब दिखाया हो, मगर तुमने जिस तसलसल और जिस अंदाज में सब कुछ देखा, फिर तुम्हारे सर पर चोट का निशान, तुम्हारी हालत, ये सब, जिया मेरी बात लिख कर रख लो, दादा नॉर्मल अंदाज में नहीं मरे, कोई चक्कर है। दुआ करो घर में सब खैरियत हो। तैयब की बात में वजन था। मैं अब भी गुजरे हुए लम्हों को ख्वाब समझने पर तैयार ना था। मुझे घबराहट होने लगी। दादा की मौत को याद किया तो याद आ गया कि इस वक्त भी मैं साहिब फराश हो गया था, एक अरसा बीमार रहा था और इस वक्त भी थोड़े से इख्तलाफ के साथ वही कुछ हुआ था। दिल ने बेख्तियार दुआ मांगी कि घर में खैरियत हो। मैंने इस तरह भी कैफियत में तांगे वाले को डांट दिया कि वो तेज चलाए। जिया, ज्यूसा कैसी थी? क्या वही जो एल्सिया के घर? नहीं, मैंने बात काट दी, वो कतई मुख्तलिफ थी, मगर बेहद पुरकशिश और हसीन। इसका अंदाज हमदर्दाना था। वैसे यार, तुम आदमी दूसरी किस्म के हो। अगर मेरे आगे पीछे इतना हुसन होता तो मैं आसमानों में उड़ता। ज्यूसा दूसरी ही कहानी सुना रही थी। मैं सब की सब कहानियां सुनकर हर एक पर ईमान ले आया था। वो अपनी ही रो में बहा जा रहा था। इसमें अजीब सा सुनहरापन था। तैयब और मेरी अजीब सी कैफियत हो गई। बेवजह इस मकड़ी का ख्याल आ गया, जिसे मैंने काफी दिनों तक संदूकची में छुपाए रखा था। बस इसी सुनहरेपन पर तो जान लुटा दिए देता मैं। बकवास बंद करो, मैंने इसे झड़क दिया। बिल्कुल इसी अंदाज में तुमने ज्यूसा को भी डांटा था जिया। यह तुम्हारे अखलाक बहुत खराब है। कम अज कम औरत से बात करते हुए तो औरत, मुझे तो नहीं लगा कि वो औरत है। यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तैयब, कि अब जब मैं ज्यूसा का तस्वर भी करता हूँ तो वो सुनहरी मकड़ी मेरे दिमाग में अपनी बारीक मगर चुपती हुई बहुत सी टांगों से रेंगने लगती है। लाहौल वाला बहुत ही बज़ोक हो यार। मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई जहरीली नागन भी खूबसूरत औरत का रूप में आए तो तुम्हें इससे अखलाक और मोहब्बत से बात करना चाहिए। तैयब हत्या से उखड़ चुका था। एक मर्तबा एक चुड़ैल मुझसे टकरा गई थी। मैंने लिफ्ट नहीं कराई, मगर जैसे ही इसने एक हसीन रूप औरत का रूप धारा, मैं इस पर फरीफत्ता हो गया। अब वो अगर मुझसे मिलने आती है और मैं, तुम चुप नहीं रह सकते, मैं झुल्ला गया। रह सकता हूँ, मगर तुम अपने जहन को इन लम्हों की कैद से आजाद कर लो तो। तैयब ने इंतहाई संजीदगी से कहा। मैंने गहरी सांस लेकर चारों तरफ देखा। अब घर ज्यादा दूर नहीं था। पता नहीं शाली बाबा से कैसे मुलाकात होगी। मैं जेरे लब लब बड़बड़ाया। अचानक तांगा रुक गया। बीच सड़क पर हमारे इर्द गिर्द सन्नाटा था, हालांकि ये कोई सुनसान सड़क नहीं थी। मैं चौंक उठा, ऐसा क्यों था? ये तो मसरूफ सड़क थी। यहाँ से दाएं तरफ जाकर अगर हम गली में मोड़ चुके होते तब तो ठीक था कि जेली गलियां किसी भी वक्त सुनसान हो सकती हैं। वैसे भी ये वक्त ऐसा था जब लोग अपने अपने काम पर जा चुके होते थे, मगर ये सड़क तैयब भी तांगे के रुकने पर हैरान था। क्या बात है भैया, इसने पलट कर तांगे वाले से कहा। मैं भी इसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। मैंने पहली बार तांगे वाले की तरफ देखा था। वो एक सिया चादर को अपने गिर लपेटे हुए था। सर पर इसने गालबन ऊंची तोली पहन रखी थी और चादर को इस टोपी के ऊपर डालकर अपने गिर लपेट रखा था। इसके हाथ इस चौड़ी चादर में छुपे हुए थे। वो साक्त था। इसका रुख अपने सामने की तरफ था, जबकि हम सिर्फ इसकी पुष्ट देख सकते थे। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ यार, क्या घोड़ा उड़ गया? तैयब ने जरा सा उचक कर इसका चेहरा देखना चाह। एन इसी लम्हे वो धीरे से मुड़ा, मैं उछल पड़ा। वो शाली बाबा थे। शाली बाबा आप? हाँ बेटा मैं। यहाँ तुम उतर कर पैदल घर चले जाओ। लेकिन शाली बाबा, मैंने शराबी कैफियत में बोलना शुरू कर दिया, मैं तो आपसे मिलने के लिए बेचैन हूँ। मैं सख्त परेशानी में हूँ। मैं जानता हूँ, सारी कहानी सुन चुका हूँ। ज्यूसर ठीक कहती है। वो पत्थर मुझे दे दो। वो मैंने नहीं भेजा था। तुमने जो अज़ियत काटी है वो पत्थर ही इसका सबब है, वरना मैंने तो ऐसा हिसार खींच दिया था कि सफर सुकून से कर जाता। ये शाली बाबा है? तैयब अब तक गालबन हैरत से साख था। हाँ, मैंने पलटकर कहा और शाली बाबा की तरफ मुतवज्जा हो गया। इसी दौरान में मैंने वो पत्थर निकाल कर शाली बाबा को दे दिया। इनकी फैली हुई हथेली पर रखते ही वो पत्थर पानी हो गया। मैं और तैयब हैरत से इसे देख रहे थे। ये लो, शाली बाबा ने हरे रंग के कपड़े में लिपटा एक तावीज मुझे दे दिया। इस तावीज में चांदी की जंजीर पड़ी थी, इसे गले में पहन लो। मैंने वो इनसे ले लिया और उसे गौर से देखने लगा। इसी दौरान में शाली बाबा की आवाज आई। लहजा घबराया हुआ था। जल्दी करो जिया। मैंने चौंक कर इन्हें देखा। वो देखो, तैयब चीखा। वो सामने सड़क की तरफ इशारा कर रहा था। मेरी निगाह सड़क पर पड़ी। वहाँ एलसी अपनी बेटी और डेकलिस के साथ बड़े होंहार अंदाज में मेरी जानिब बढ़ रही थी। मैं इन तीनों को देखकर हैरान रह गया। वो तीनों तो मर चुके थे। मैंने और तैयब ने इन तीनों को अपने हाथ से एलसिया की कोठी के पिछले हिस्से में दफन किया था। जल्दी पहनो, शाली बाबा चीखे। मुझे होश आ गया। मैंने जल्दी से तावीज गले में डाल लिया। सन्नाटा सा छाया। तैयब आंखें दोनों हाथों से मरने लगा। सड़क सुनसान थी, हर तरफ सुकून था। वो लोग? कोई नहीं था जिया, ये वतसला कमटेकर की कारस्तानियां हैं। शाली बाबा बड़े ठहरे हुए अंदाज में बोले, जाओ घर जाओ। बाबा, ये ज्यूसा एलन और वतसला कमटेकर, मैं तुमसे जल्द मिलूंगा जिया, लेकिन सिर्फ इतना समझ लो, ज्यूसा ठीक कहती है। वो तुम्हारे रवैये की वजह से उलझ जाती है, वरना वाकई तुम्हारी मदद करना चाहती है। तुम अपने रवैये में लचक पैदा करो। तुम्हें हरासा करने वाली ज्यूसा नहीं, एलन और वतसला है। मगर बाबा, मैंने कहना चाहा, उतरो जल्दी, मुझे जाना है, मैं मसरूफ था। अगर मुझे तुम्हारे बारे में इसने ना बताया होता तो शायद मैं कभी ना आता। मैं वो वजीफा छोड़कर आ ही नहीं सकता था। मैं फिर मिलूंगा। तुम अपने अंदर कुवत पैदा करो, खुद एतमादी को मजबूत करो। तुम बेहिम्मत होते जा रहे हो और ये तुम्हारे लिए खतरनाक है। खुदा को याद रखो जिया, वो भूलने की चीज नहीं है। अता ऐसा नहीं था तो बचता रहा, और जब इसने हिम्मत हार दी तो जान हार बैठा। तैयब ने इस दौरान में सामान टांगे से उतार लिया। मैं भी नीचे उतर आया। शाली बाबा ने लगामें ढीली की। मैं मुस्तरब होकर आगे बढ़ा। बाबा, मैं जानना चाहता हूँ, ये नॉवेल कॉल बेल हिस्सा दोम का बकिया हिस्सा पार्ट 10 में समाप्त फरमाएं।